नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर घटाकर 6% की, विकास को बढ़ावा देने के लिए उदार रुख अपनाया। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को भी घटाकर 6.5% किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ा संकट बताया, कहा इसका एकमात्र उपाय सतत जीवन शैली है। बिम्स्टेक देशों के कृषि मंत्रियों की आज काठमांडू में बैठक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर 104% जवाबी शुल्क और भारत से आयात पर 26% शुल्क आज से लागू। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी की है। अब रेपो दर 6% हो गई है। रिजर्व बैंक ने 5 वर्ष में लगातार दूसरी बार रेपो दर घटाई है। इससे पहले फरवरी में रेपो दर कम की गई थी। आज मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि 6 सदस्यों की मौद्रिक समिति ने इस वित्त वर्ष की पहली बैठक में सर्वसम्मति से रेपो दर कम करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि खुदरा महंगाई दर 2025-26 में 4% रहने की संभावना है।
The MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, the SDF rate under the liquidity adjustment facility shall stand adjusted to 5.75%.
और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज कहा कि वैश्विक व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताओं के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विकास की संभावित दर को 6.7 से घटाकर 6.5% कर दिया गया है। हालांकि भारत के कृषि क्षेत्र की विकास संभावनाएं उज्जवल बनी हुई हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी सक्रियता दिखाई दे रही है तथा सर्विसेज क्षेत्र में भी मजबूती देखी जा रही है। एमपीसी ने आज अपने रुख को न्यूट्रल से बदलकर एकोमोडेटिव कर दिया है। आगे बढ़ते हुए गवर्नर ने कहा कि भविष्य में किसी भी झटके की अनुपस्थिति में एमपीसी केवल 2 विकल्पों पर ही विचार करेगी, यथास्थिति या दर में कटौती। निशा रानी के साथ मैं अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
इस बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज कारोबार की शुरुआत नुकसान के साथ हुई। सेंसेक्स 350 अंक से अधिक गिरकर 73,874 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 107 अंक गिरकर 22,433 पर था। जवाबी शुल्क लगाने का अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला लागू हो गया है। इसमें चीन से आयात पर 104% शुल्क भी शामिल है। नई शुल्क व्यवस्था राष्ट्रपति ट्रंप की उस घोषणा के बाद लागू हुई है जिसमें उन्होंने चीन को अमेरिकी सामान पर लगाए गए 34% जवाबी शुल्क को वापस लेने की चेतावनी दी थी। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार इससे चीन की अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का लग सकता है और उसकी वृद्धि दर 2.4% तक घट सकती है। इस बीच भारत से आयात पर लगाया गया 26% शुल्क भी आज से लागू हो गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस संबंध में कहा कि सरकार द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में इस संबंध में फैसला किया था। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने कई मोर्चों पर बात की है जो सही दिशा में आगे बढ़ रही है।
I think when the Prime Minister and President Trump met, they had both announced that we shall enter into discussions for a bilateral trade agreement by the fall of 25. Our businesses work seamlessly with each other. India opened their arms to all the tech giants, be it Google, be it Meta. All of them were welcome in India.
इस सप्ताह के शुरू में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुल्क की स्थिति पर विचार विमर्श किया था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार दोनों पक्षों ने निष्पक्ष और संतुलित व्यापार संबंध के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसा नायके ने हाल ही में श्रीलंका से निर्यात पर लगाए गए जवाबी शुल्क से राहत के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखा है। श्रम मंत्री अनिल जयंत फर्नांडो ने संसद में इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पत्र व्हाइट हाउस पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
भाई तू हमेशा इतना एक्टिव कैसे रहता है?
सही डाइट, एक्सरसाइज और कम तेल वाले खाने से। अधिक तेल खाने से ओबेसिटी बढ़ती है और स्टैमिना कम हो जाता है।
अच्छा, सही कहा। अब मैं भी अपनी डाइट में तेल कम करूँगा ताकि फिट रहूँ।
जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं,
एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना।
कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नवकार महामंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन को आज का सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि इसका एकमात्र उपाय जैन समुदाय की सतत जीवन शैली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैन समुदाय सदियों से सादगी, स्थिरता और संयम के सिद्धांतों का पालन करता आ रहा है। श्री मोदी ने स्वदेशी उत्पादों की अधिक से अधिक खरीद करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने के महत्व को रेखांकित किया।
साथियों, जब मैं वोकल फॉर लोकल कहता हूँ, जो सामान बना है भारत में, जो बीके भारत में भी और दुनिया भर में, जिस सामान को बनाने में किसी भारतीय के पसीने की खुशबू हो, जिस सामान में भारत की मिट्टी की महक हो, हमें उसे खरीदना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है।
नवकार महामंत्र के महत्व के बारे में बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि मंत्र विकसित भारत के दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है।
नवकार महामंत्र का एक दर्शन विकसित भारत के विजन से जुड़ता है। विकसित भारत यानी विकास भी, विरासत भी। एक ऐसा भारत जो रुकेगा नहीं, जो थमेगा नहीं, जो ऊंचाई छुएगा लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटेगा।
श्री मोदी ने लोगों से 9 संकल्प करने का आह्वान किया। ये 9 संकल्प हैं: जल संरक्षण, एक पेड़ माँ के नाम, स्वच्छता, स्वदेशी उत्पादों को अपनाना, घरेलू पर्यटन, जैविक खेती, स्वस्थ जीवन शैली, योग और खेल तथा जरूरतमंदों की सहायता करना। श्री मोदी ने ज्ञान को संरक्षित रखने के सरकार के कर्तव्य के रूप में प्राकृत और पाली को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान करने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के मिशन लाइफ के अनुकूल है। श्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण साहित्यों के गुम हो जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ज्ञान भारतम अभियान की शुरुआत करेगी।
हम ज्ञान भारतम मिशन शुरू करने जा रहे हैं। इस वर्ष बजट में इसकी घोषणा की गई है। देश में करोड़ों पांडुलिपियों का सर्वे कराने की तैयारी इसमें हो रही है। प्राचीन धरोहरों को डिजिटल करके हम प्राचीनता को आधुनिकता से जोड़ेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया की यात्रा पर हैं। उन्होंने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ वार्ता की। इस दौरान भारत और स्लोवाकिया के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। राष्ट्रपति की यह यात्रा 29 वर्षों के बाद हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति का ब्रातिस्लावा के राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने भारत के राष्ट्रपति का स्वागत किया। लोक परिधान में एक स्लोवाक जोड़े ने पारंपरिक रूप से रोटी और नमक के साथ राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने गार्ड ऑफ ऑनर का भी निरीक्षण किया। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष रिचर्ड डासी से भी राष्ट्रपति मुलाकात करेंगे। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, ब्रातिस्लावा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विदेशी बैंकों के लिए विकास के बेहतर अवसर प्रदान कर रहा है और सरकार बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। लंदन में भारत ब्रिटेन निवेशक गोलमेज चर्चा को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने नीतिगत समर्थन सहित सतत आर्थिक विकास और निवेश के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक की तीसरे कृषि मंत्री स्तरीय बैठक आज काठमांडू में हुई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भूटान के कृषि मंत्री ल्योनपो युनचेन फुनशो के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल कल शाम बैठक में भाग लेने के लिए काठमांडू पहुंचा। बिम्स्टेक के अन्य 5 सदस्य देशों के कृषि मंत्री बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। नेपाल के कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कृषि की स्थिति और चुनौतियों तथा सदस्य देशों के बीच सहयोग से संबंधित मामलों पर चर्चा हुई। भारत की ओर से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक को संबोधित किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि मिशन जैसी कृषि पहलों में भारत की भूमिका का उल्लेख किया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने अधिसूचित किया है कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना के तहत कर बकाया घोषणा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि इस महीने के अंत तक है। राजपत्र अधिसूचना में CBDT ने कहा कि घोषणाकर्ता इस महीने की 30 तारीख को या उससे पहले नामित प्राधिकारी को अपना कर बकाया दाखिल कर सकते हैं। पंजाब में कल रात गुरदासपुर सेक्टर में विस्फोट में सीमा सुरक्षा बल का एक कर्मी घायल हो गया। विस्फोट में BSF और किसानों को निशाना बनाया गया था। यह घटना उस समय हुई जब BSF की टीम पाकिस्तान से लगी सीमा सुरक्षा बाड़ के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान उन्हें भारतीय क्षेत्र में संदिग्ध वस्तु नजर आई। छानबीन के दौरान टीम ने संदिग्ध IED की पहचान की, जिसके तार खेतों में छुपाए गए थे। क्षेत्र में कई IED लगाई गई थी। क्षेत्र की घेराबंदी करके IED हटाने की कोशिश में विस्फोट हो गया, जिससे BSF जवान के पैर में चोट आई। जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, अब वो सुरक्षित है। बिहार में बेगूसराय और आसपास के जिलों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हुए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार बेगूसराय के बलिया, भगवानपुर, मटिहानी और साहेबपुर कमाल इलाकों में 5 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में 4 लोग घायल भी हुए हैं। मधुबनी के झांझरपुर इलाके में 3 लोगों की मौत हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
एक गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही। बैंक वालों का फोन। हेलो,
आपका बैलेंस कम पड़ रहा है मैडम, चेक बाउंस होएगा।
गाड़ी भी स्टार्ट, ये बैंक वाले भी ना।
हेलो
हेलो मैडम, आपका लोन जो है वो।
हाँ हाँ पता है, रिजेक्ट हो गया ना फिर से।
नहीं नहीं मैडम, आपका मुद्रा लोन अप्रूव्ड हो चुका है
बिना गारंटी के।
हाँ जी,
आपके बैंक ने मुझ पर विश्वास किया, थैंक यू।
विश्वास मोदी जी को आप पर है मैडम।
जब विश्वास का इंजन लग जाता है तो व्यापार की गाड़ी चल पड़ती है।
एक्सेस टू क्रेडिट कैसे बढ़ा, इसका एक उदाहरण मुद्रा योजना है।
पिछले 10 साल में 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 52 करोड़ से भी ज्यादा लोन छोटे उद्यमियों को मिले हैं और उसमें से 70% उद्यमी महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल, स्वावलंबन और उद्यमिता के 10 साल।
ये आकाशवाणी है। IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। चंडीगढ़ में कल रात खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 18 रन से हराया। एक अन्य मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 रन से हराया। अब कुछ खबरें विदेश से। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सेंटो डोमिंगो में एक नाइट क्लब की छत ढहने से 98 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घटनास्थल पर जीवित बचे लोगों के लिए तलाशी अभियान जारी है। हादसे में मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। उपराज्यपाल डॉ नीलम धुंगाना तिमसिना को नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है। 6 अप्रैल को निवर्तमान गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से राष्ट्र बैंक में कोई गवर्नर नहीं था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर घटाकर 6% की, विकास को बढ़ावा देने के लिए उदार रुख अपनाया। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को भी घटाकर 6.5% किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ा संकट बताया, कहा इसका एकमात्र उपाय सतत जीवन शैली है। बिम्स्टेक देशों के कृषि मंत्रियों की आज काठमांडू में बैठक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर 104% जवाबी शुल्क और भारत से आयात पर 26% शुल्क आज से लागू। और अहमदाबाद में IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।